प्रिय श्रोताओ नमस्कार। कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय प्रेम है और इसके लेखक भी राजा सुलेमान हैं। श्रेष्ठ गीत एक निपुण कलाकार का एक अति सुंदर एवं आनंददायक प्रेम गीत है, जिसे श्रेष्ठ गीत कहना उचित ही है। जी हाँ श्रोताओ, इस पुस्तक में उस शुद्ध वैवाहिक प्रेम को चित्रित किया गया है जिसे परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में निर्धारित किया। श्रेष्ठ गीत में अलंकारित भाषा का भरपूर उपयोग किया गया है, जो उसके साहित्यिक सौंदर्य का एक विशिष्ट कारण है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं। आज फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम बाइबल में से एक नई पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस पुस्तक का नाम है श्रेष्ठ गीत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले अध्ययन में हमने सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन किया, जिसका लेखक सुलेमान था। आज के इस पुस्तक का अध्ययन जिसे हम करने जा रहे हैं, इसका भी लेखक सुलेमान है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पुस्तक के परिचय को देखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर में भी रहकर आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक भाई बहन जब आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। आप हम सब से बोले और बातचीत करें, श्रेष्ठ गीत के द्वारा हम सबको सिखाएं, ताकि हम आप में बलवंत होने पाएं। आज के इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, इस पुस्तक का प्रथम पद श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है स्पष्ट करता है कि इस पुस्तक का लेखक राजा सुलेमान है। सुलेमान ने नीति वचन और सबोपदेशक की पुस्तकें लिखी है। यह पुस्तक अर्थात श्रेष्ठ गीत एक गीत है। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत हैं। सुलेमान ने 3000 नीति वचन लिखे, परंतु यदि हम सब नीति वचनों और सबोपदेशकों को गिने तो भी वे 3000 नहीं होते हैं। परंतु हमारे पास जो भी है उसके विषय में हम दो बातें कह सकते हैं। पहली, उसकी ये रचनाएं सर्वोत्तम हैं। दूसरी, हमारे पास वही है जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम पढ़ें और सीखें। उस पद में यह भी लिखा है कि उसके गीतों की संख्या 1005 हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह एक महान गीतकार था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर का वचन जब किसी बात का उल्लेख करता है तो वह निश्चित बात करता है। इनमें से हमारे लिए 5 गीत चुने गए हैं। सुलेमान के अधिकांश गीत हमारे पास में नहीं है, इसमें संदेह नहीं। परंतु हम सामान्यतः इस बात को कहते हैं कि हमारे पास एक ही गीत है। सुलेमान के गीत को हम श्रेष्ठ गीत कहते हैं, परंतु इसमें अनेक छोटे छोटे गीत हैं। अब इन गीतों की संख्या के विषय में मतभेद है। प्राचीन विचार के अनुसार ये गीत 5 हैं और मैं इससे सहमत हूं। कुछ अन्य विचार के अनुसार ये 13 गीत हैं, परंतु मैं 5 को ही मानता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर शब्द प्रिय पुरुष का नाम है और प्रेम स्त्री का नाम है। श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय उसके 3 पद में से यह प्रकट है, मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। और तब हम अध्याय 8 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। ध्यान दीजिएगा कि श्रेष्ठ गीत उपमाओं से रची गई कविता है। इसमें प्रेरणा की तो समस्या नहीं है, परंतु अर्थ निर्धारण कठिनाई उपस्थित करता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे बाइबल में नहीं होना चाहिए, परंतु यह स्वीकृत धर्म पुस्तकों में है। श्रेष्ठ गीत बाइबल की पुस्तकों में सबसे अधिक परिव्यक्त पुस्तक है। बाइबल को पहली बार पढ़ने वाला यहां आकर उलझन में पड़ जाता है। सांसारिक व्यक्ति इसका गलत अर्थ निकालता है और वे जो इसका संदेश समझ नहीं पाते वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौलुस की पत्रियों के कारण उलझन में पड़ जाने पर पत्रस ने लिखा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 16 पद, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मेरे विचार में यह श्रेष्ठ गीत के संबंध में भी सच है। ओरिजन और जेरोम ने बताया कि यहूदी अपने युवकों को 30 वर्ष की आयु तक इसे पढ़ने नहीं देते थे। उनके विचार में इसमें अश्लीलता, भाव उत्तेजना, अशिष्टता, कामोत्तेजना, भोग विलास और काम शक्ति है। दूसरी ओर यह विवाहित प्रेम का एक अद्भुत चित्रण है। इसमें दो भ्रमित वर्गों के लिए एक उत्तर दिए गए हैं। एक वर्ग वह जो विवाह का विरोध करता है और दूसरा वह जो शारीरिक लालसा को पूरा करने का समर्थन करता है। यह पुस्तक दोनों ही को गलत सिद्ध करती है। यह विवाहित प्रेम को एक महिमामय अनुभव बताती है। कभी कभी युवा प्रचारकों को निर्देश दिया जाता है कि वे बूढ़े हो जाने तक कि इससे प्रचार न करें। एक सेवानिवृत्त पादरी ने मुझसे भी कहा कि मैं 60 वर्ष की आयु के पश्चात ही इस पुस्तक से प्रचार करूं। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने तुरंत पलटकर इस पुस्तक से प्रचार किया। अब क्योंकि मैं अब उम्र में बढ़ रहा हूं तो मैं समझता हूं कि यह पुस्तक क्या है, इसलिए मैं अपने आप को इस पुस्तक से प्रचार करने के योग्य भी समझता हूं। यह पुस्तक आज मुझे अधिक संदेश देती है, अपेक्षा इसके कि मैं अपने उम्र में कम था उस समय इसके अध्ययन को करता। इस पुस्तक की भाषा सजीव, विस्तृत, असामान्य और निर्भीक है। प्रभु यीशु के साथ हमारे संबंधों का महिमामय चित्रण प्रस्तुत करती है। मैं इस पुस्तक के अतिरिक्त अन्य किसी पुस्तक को नहीं जानता जो आपको प्रभु यीशु के निकट लाने और घनिष्ठ संबंध बनाने में ऐसी उत्तम पुस्तक हो। यदि आप इस पुस्तक की प्राचीन काव्य रचनाओं से तुलना करें, जैसे फारसी की कविताएं, तो आप श्रेष्ठ गीत को अधिक विनम्र और संयत देखेंगे। फारसी कविता तो आज के अश्लील साहित्य के समान है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि यहूदी श्रेष्ठ गीत को धर्मशास्त्र की महापवित्र पुस्तक मानते थे, अतः यह पुस्तक आम मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसमें आप परम प्रधान के गुप्त निवास में वास करने लगते हैं। यह भी एक कारण है कि मैं इस पुस्तक पर विचार करना नहीं चाहता हूं। यह अविश्वासियों और सांसारिक मसीहियों द्वारा गलत अर्थों में काम में ली जाती है। यदि आप मसीह यीशु के संगति में वास करने वाले विश्वासी हैं और उसका अति मान रखते हुए उससे प्रेम करते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए भी महान अर्थ रखेगी। मेरे मित्रों, श्रेष्ठ गीत एक काव्य रचना है और व्यवहारिक पुस्तक है। इसमें परमेश्वर अपने प्रजा से कविता रूप गीतों द्वारा बातें करता है, जिसमें एक कहानी उभरती है। हमें इस पुस्तक में अपने पांव से आत्मिक जूते उतारने होंगे। यदि हम इस पुस्तक को पढ़ें, हम पवित्र स्थान पर खड़े हैं। श्रेष्ठ गीत एक कोमल फूल की नाई है जिसे अत्यधिक सावधानी के स्पर्श की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, इस पुस्तक में चार महत्वपूर्ण अर्थ हैं, तो आइए हम देखें। पहला है विवाहित प्रेम की महिमा। इस पुस्तक में विवाहित जीवन की पवित्रता प्रकट की गई है और विवाह परमेश्वर द्वारा स्थापित एक संस्कार है। यह पुस्तक हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाती है। यहूदियों की शिक्षा के अनुसार यह पुस्तक एक संतुष्ट पति और एक समर्पित पत्नी के मन का प्रदर्शन है। आज यवन स्वतंत्रता की क्रांति को हम देखते हैं और आम धारणा यह है कि यह उचित है। एक युवक जो प्रेम करने की स्वतंत्रता में विश्वास रखता था, उसने मुझे बताया कि ऐसा जीवन जानवरों का सा जीवन है। उसने कहा, मैं अनेक वर्ष जानवर की नाई जी रहा था। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो मेरे मित्रों के लिए यौनाचार एक पशु से अधिक कुछ भी नहीं था। आज के युवा वर्ग के लिए जीवन यौन अभिव्यक्ति ही है, परंतु मेरे विचार में वे इस विषय पर बहुत कम जानते हैं। वे यौन संबंधित जानकारी किसी पशु से अधिक नहीं रखते। सड़क का कुत्ता भी उनके बराबर ही जानता है। कुछ तो कमी है, उनके जीवन में बहुत बड़ी कमी है। मेरे मित्रों, इस पीढ़ी को यौन संबंधित अनुभव तो बहुत हैं, परंतु जानकारी बहुत कम है। परंतु वे सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। एक पिता अपने पुत्र को यौन शिक्षा संबंधित कुछ बातें बताना चाहता था, अतः उसने भूमिका बांधते हुए कहा, बेटा, मैं आपसे जीवन के विषय में कुछ तथ्यों पर चर्चा करना चाहता हूं। पुत्र ने उत्तर दिया, जी हां पिताजी, आप बताइए। आप क्या जानना चाहते हैं? वह लड़का यवन संबंधित अनाचार से परिचित था, तो सोचता था कि वह अपने पिता से अधिक जानता है। एक अभिनेत्री थी जो सिनेमा की महारानी मानी जाती थी। उसने 5 पति किए थे, परंतु प्रेम के बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। अंत में उसने आत्महत्या कर ली। हमारी आज की पीढ़ी के यवन संबंधित विचारों और श्रेष्ठ गीत में व्यक्त विवाहित प्रेम की महिमा में आसमान और जमीन का अंतर है। दूसरी बात हम देखते हैं, इसराइल के प्रति परमेश्वर प्रेम, अर्थात इसराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। यह इस पुस्तक में पाया जाने वाला कोई नया विचार नहीं है। भविष्यद्वक्ताओं ने भी तो इसराइल को परमेश्वर की पत्नी की उपमा दी थी। होशे नबी इसी विषय पर चर्चा करता था। इसराइल की मूर्ति पूजा विवाहित प्रेम में विश्वासघात स्वरूप मानी गई थी और उसे महापाप गिना गया था। होशे की पुस्तक में यह भी व्यक्त है। मेरे मित्रों, इसराइल के गुरु और शास्त्रियों ने इस पुस्तक के 2 अर्थ प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें कलीसिया भी स्वीकार करती है। कलीसिया ने भी 2 अन्य अर्थ प्रस्तुत किए हैं। अब हम तीसरी अर्थ को देखते हैं, मसीह और उसकी दुल्हन का चित्रण। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। यह नए नियम की एक सामान्य उपमा है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय। इस पुस्तक में परमेश्वर मानवीय प्रेम के द्वारा हमारी मंद बुद्धि, मृतक हृदय, विकृत प्रेम और हमारी पतित इच्छा पर अपने महान प्रेम को प्रकट करता है। वह सर्वोत्तम माननीय प्रेम के द्वारा हमें उत्प्रेरित करके हमारे लिए उसके महान प्रेम का बोध करवाना चाहता है। मेरे मित्रों, यह पुस्तक आपको प्रभु यीशु के साथ ऐसे अद्भुत एवं अनुपम संबंध में लाएगी जिन्हें आपने पहले कभी नहीं जाना है। आज हमें जिस बात की आवश्यकता है वह है परमेश्वर के वचन का ज्ञान और प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध। मुझे शक है कि हम में से बहुत कम हैं जो आज इस अनुभव में हैं और इसको नहीं जानने के कारण उनका जीवन परमेश्वर से दूर है। अब हम देखते हैं चौथी बात, मसीह की सहभागिता और विश्वासी। यह पुस्तक विश्वासी के प्रति मसीह का प्रेम और मसीह यीशु के साथ आत्मा की सहभागिता को दिखाता है। वर्षों से परमेश्वर के पवित्र जनों ने इसका अनुभव किया है। पौलुस कहता है गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सैमुएल रदरफोल्ड की पत्नी देखती थी कि वह रात में सोने नहीं आ रहे हैं, तो वह उन्हें देखने के लिए जाती थी, तो वे कड़ाके की ठंड में घुटनों पर प्रार्थना कर रहे होते थे। वह उनका लंबा कोट लेकर उन पर डाल देती थी। डीएल मूडी, रॉबर्ट मंक चेने भी प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंधों में होते थे। यह द्वितीय स्तर का अनुभव नहीं है जैसा कुछ लोग कहते हैं। सच तो यह है कि यह अनुभव से बढ़कर है। यह प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध है। वह कैसा महान है, वह कैसा महिमामय है। हमें उस स्थान पर आना है जब हम सच में कह सकते हैं कि हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। मेरे मित्रों, आज लोग भ्रमित हैं। वे सोचते हैं कि मसीह जीवन खिलौने जोड़ने के निर्देश जैसा है। एक नंबर का हिस्सा लो और 2 नंबर में जोड़ो, फिर 3 नंबर जोड़ो, परंतु कुछ निर्देशों को समझना कठिन होता है। मैं अपने बेटे के लिए ये खिलौने लाता हूँ और कुछ निर्देशों को समझाने के लिए तो मेरे विचार में कॉलेज की डिग्री की भी आवश्यकता होती है। कुछ विश्वासियों का विचार है कि मसीही जीवन ऐसा ही है। वे सोचते हैं कि आप मनोविज्ञान में सहज वृत्ति जोड़ दें और उसमें कुछ बाइबल पर डाल दें कि उसमें मिठास आ जाए, तो वह मसीही जीवन का एक सूत्र बन जाएगा। मेरे मित्र, क्या मैं कह सकता हूं कि हमें मसीह यीशु के साथ व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता है? हमें जोश भरे मनोवेग की आवश्यकता है। प्रभु यीशु कलीसियाओं द्वारा व्याप्त ठंडे प्रेम से प्रसन्न नहीं होता है, वह गुनगुने प्रेम से भी प्रसन्न नहीं होता है। समर्पित मसीह जन भी ठंडे पड़े हुए हैं। कुछ का स्वभाव अमैत्रीपूर्ण और हठीला होता है। हमें प्रभु यीशु के प्रति सच्चा जीवंत और जोश भरा मनोवेग चाहिए। हमें दूसरों के जीवन को देख करके जीने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें मसीह को जानने और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़ने की आवश्यकता है। यह पुस्तक वैयक्तिक है। यह उद्धार से रहित मनुष्य के लिए नहीं है। यह लहू लुहान कान वाले प्रभु से व्यक्तिगत संबंध में रहने वाले मनुष्यों के लिए है, क्योंकि इस पुस्तक की रचना समय के क्रम में घटित दृश्यों में है। मैं इसकी रूपरेखा तैयार करना नहीं चाहता हूं। इस पुस्तक में नायकों का परस्पर उत्तर प्रति उत्तर दिया गया है। इसमें एक सुनेम वासी वधु है, यरूशलेम की पुत्रियां हैं, वर और उस सुनेम वासी स्त्री का परिवार है, मृतक पिता माता दो पुत्रियां और दो या तीन पुत्र हैं। इसका एक अर्थानुवाद 19वीं शताब्दी के तर्क आधारित धर्म के समर्थक एक जर्मनी के स्कूल का विचार है। यह वास्तव में अविश्वास ही है। वहीं से मुक्त विचार का जन्म हुआ है और वह भी अविश्वास है। उन्होंने इस कहानी को जो रूप दिया है वह है कि सुलेमान ने इस सुनेम वासी लड़की को अगवा किया। पहले तो वह उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, परंतु अंत में तैयार हो जाती है। मेरे मित्रों, इस प्रकार की कई किंवदंतियां हैं। कहानी को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाया गया है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि श्रेष्ठ गीत वास्तव में बहुत कठिन पुस्तक है। यह हमें मदद करेगी कि किस प्रकार हम परमेश्वर के प्रेम को बहुत निकटता से समझ सकते हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर को जान सकते हैं। आज जब हम इस पुस्तक की पृष्ठभूमि को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इस पुस्तक के अध्ययन में अवश्य ही मेरे साथ में शामिल रहेंगे। आप इस पुस्तक के एक एक पद में आप मेरे साथ होंगे। मेरे मित्रों, हम अगले अध्याय में इस विषय पर और अधिक चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस परिचय के द्वारा से आपने अवश्य ही मूल बातों को समझ लिया है। जिस प्रकार से हमने चार अर्थों को देखा है, ये चार अर्थ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक अध्याय से उन पदों को पढ़ेंगे, तो ये चार पद चार बातें हमारे जीवन में सहायक होंगे। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे एवं हम सब की सहायता करे कि हम श्रेष्ठ गीत को भली भांति समझ सकें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820 4414 याद रखें 9958820414 और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397 याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।